ओम शांति। आज हमारे सामने आदरणीय भ्राता ब्रजमोहन जी हैं। भाई साहब को देखते ही हम सभी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। तो आज हम भाई साहब से सुनते हैं कि अमृत वेले का क्या महत्व है। उससे पहले मैं आप सभी से एक अनुरोध करना चाहती हूँ।
ओम शांति। बाबा का मधुबन इतना प्यारा और सुख देने वाला है कि हम सब उसका अनुभव कर रहे हैं। यहां आकर बेहद की अनुभूति होती है। बेहद का परिवार, बाबा कहता है कि मैं सबसे बड़ा गृहस्थी हूं, है ना। और बाबा ने बहुत ही सुंदर ढंग से साकार मुरली में कैसे मैं गृहस्थी हूं, जो कुछ गृहस्थ में होता है, माता पिता बच्चे, वो बताया है। लेकिन किसी भी माता पिता के, क्योंकि हमारा सब स्पिरिचुअल है, तो कैसे स्पिरिचुअल ढंग से ब्रह्मा बाबा माता है, शिव बाबा पिता है, हम बच्चे हैं। इतने बच्चे सिवाय अडॉप्शन के नहीं हो सकते, तो हम सब बाबा के अडॉप्टेड चिल्ड्रन। अगर सारे वर्ल्ड के इकट्ठे हो जाए तो अभी प्रत्यक्षता हो जाए, लेकिन हम अभी सारे पूरी तरह तैयार नहीं हैं, तो टुकड़ियां टुकड़ियां जगह जगह तैयार हो रही हैं। लेकिन जब भी यहां आते हैं तो भाई बहन काफी संख्या में होते हैं। बेहद का ये हॉल है विशाल, तो बाबा कहता है कि विशाल संगठन जिसमें हमें बेहद के परिवार की सचमुच फीलिंग आती है, और एक दूसरे को देखकर क्या होता है, कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, ऐसे कहा जाता है ना। तो एक दूसरे को देखकर भी हम बहुत ही इतने मस्त और इतने ईश्वरीय शांति और सुख में, चाहे बात ना भी करे, पास से गुजर जाए, फील करते हैं। इतना बड़ा हॉल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी नहीं है, और इतना बड़ा स्थान किसी बड़े सेठ का भी नहीं होगा, किसी बड़ी सरकार का भी नहीं होगा, जहां उनके अपने सब मित्र आकर के, संबंधी आके मिले। तो पहली तो आपको ये मुबारक देनी है कि हम सबको बाबा ने अपने आप सिलेक्ट करके अडॉप्ट किया, है ना। हमेशा बच्चे को ही बाप अडॉप्ट करता है, ऐसा तो नहीं बच्चा बाप को अडॉप्ट करता है, ऐसा तो नहीं होता। तो हम सबको बाबा ने, जो ऑल माइटी है, जो सबकी जन्म पत्रियों को जानता है, जिसको भृगु ऋषि कहते हैं, वो बाबा ने हमको अडॉप्ट किया, अपने बच्चे बनाया है, चरणों में जगह मांगने वालों को आंखों में बसा लिया। तो हमको कितना हर्षित, प्रफुल्लित और अपने भाग्य पर नाज है। तो उसकी अनुभूति हम अपने घर में नहीं कर सकते, अपने सेंटर में नहीं कर सकते, अपने शहर के बहुत बड़े प्रोग्राम में भी नहीं कर सकते, अपने जोन के मेगा प्रोग्राम में भी नहीं कर सकते, जितनी अनुभूति हम मधुबन में करते हैं। क्योंकि यहां जगह जगह से हैं बाबा के बच्चे आते हैं, तो बेहद का बाप, सर्वात्माओं का पिता, उसका यहां हमको साक्षात्कार और अनुभूति साकार में होती है। तो योग ना लगाते हुए भी हमको अनलिमिटेड, इसका नाम ही मधुबन, अनलिमिटेड स्नेह और साथ साथ अनलिमिटेड वैराग, वन मैंने वैराग की अनुभूति जितने दिन हम यहां रहते हैं, अपने आप ही हो जाती है। आप बताओ, इस वक्त आपको अपना लौकिक याद है? कईयों को तो दिन भी भूल जाता है कि आज कौन सा दिन है, और लौकिक तो बिल्कुल भूल जाता है। जो माताएं भोजन बनाती हैं घर में, उनको भूल गया कि मैं भोजन बनाती हूं, यहां तो बाबा के भंडारे का भोजन मिलेगा है? इसी प्रकार से जो आपके साथ रहने वाले होंगे वो भी, और जो आपकी बिल्डिंग में रहने वाले होंगे वो सब बेहद के हैं। तो नेचुरली जब कोई व्यक्ति एक छोटे से घर से निकलकर किसी बगीचे में जाता है तो भी उसको रिफ्रेश फील होता है, और यहां तो बाबा के डायरेक्ट मधुमन और ऐसी तपस्या भूमि जहां सुबह से शाम तक, दिन से रात तक, वर्षों वर्ष और कोई बिजनेस होता ही नहीं सिवाय ज्ञान चर्चा के, और स्वयं भगवान जहां आते हैं, तो आप सोचिए उस जगह की तो मिट्टी को लोग, अगर भक्तों को पता लग जाए तो, भगत मंदिरों में देखा ना अपने फर्श को भी दबाते हैं कि भगवान के चरण दबा रहे हैं, तो कैसा उनको फील होगा। और बाबा ने हमको सहज ही अपनी पालना की भी अनुभूति करा देता है। कम से कम जितने दिन हम यहां रहते हैं तो हम कहते हैं कहां है, कहां भोजन कर रहे हैं बाबा के घर, कहां सो रहे हैं बाबा के घर। किसी को कहो बाहर फुल बिल्डिंग है उसमें तुम्हें अकेले दे रहने को देते हैं जाओ, वो कहेगा नहीं, यहां मुझे आप टेंट में ही बिस्तरा दे दो, मैं बाबा के घर सोना। फर्क पड़ जाता है ना धरती का। तो ऐसे खुशकिस्मत हम बाबा के बच्चे। अब देखिए कि बाबा ने बहुत सहज करके हमको पढ़ाया है, बहुत सहज। और पढ़ाइयों में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने टीचर होते हैं, कितनी क्लासें होती हैं, बहुत दिक्कत होती है। छोटी आयु के बच्चे पढ़ते हैं, बुजुर्ग लोग बहुत कम पढ़ते हैं। यहां पर एक ही क्लास, एक ही टीचर, एक ही पढ़ाई, और हर एक पढ़ सकता है ना। एमए बीए पास किया हुआ भी पढ़ सकता है, बिल्कुल ना पढ़ा हुआ भी पढ़ सकता है, बुजुर्ग भी पढ़ सकता है, दादा भी पढ़ सकता है, पोता भी पढ़ सकता है। इसकी एडमिशन फ्रॉम ईयर 8 to 80 तक है, कोई भी आ जाए। और उस पढ़ाई में बहुत सहज सब्जेक्ट दिए हैं ताकि हम अपने पिछले कर्मों के हिसाब के मुताबिक लौकिक में भी रहें, और साथ साथ हम सेवा भी करें और अपना भविष्य भी बना लें, पिछला उधार चुका दें, आगे का जमा कर लें। उस हिसाब से बाबा ने हमें ज्ञान, योग और इनके आधार पर धारणा, और फिर दान पुण्य के लिए पब्लिक की सेवा है ना, और ऐसा धन दान करना जो हर एक कर सकता है, और धन दान करने से कम होगा, ये धन दान करने से बढ़ेगा। फिर भी देखा क्या गया है कि इन चार सब्जेक्ट में ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, वो है सेवा। आप देखेंगे किसी भी ब्राह्मणों को सेवा दे दो तो वो खाना पीना भी भूल जाएंगे, क्योंकि देने में खुशी है, तो कुछ ना कुछ सेवा में कोई भी पार्ट मिल जाए तो बहुत खुशी आ जाती है। तो जो खुशी देने वाला सब्जेक्ट है, दान करने वाला, माल बाबा का दान दूसरे को करना है, हम बीच में हाथ लगाते हैं सिर्फ, है ना। जो किचन में रोटी बांट रहे हैं, रोटी बाबा के यज्ञ की है, खाने वाले दूसरे हैं, वो सिर्फ बांट रहे हैं, तो फिर भी सेवा की खुशी है ना। इसी तरह ज्ञान बाबा का दे दूसरे को रहे हैं, और कितनी खुशी है। सबसे ऊंचा दान ज्ञान धन का दान, ये सब्जेक्ट तो बड़ा अच्छा है। अच्छा, ज्ञान का सब्जेक्ट क्या है कि जैसे माता पिता बच्चे को नहला देते हैं सुबह के वक्त, है ना, स्नान ना भी करना चाहे तो उसको थोड़ा बहुत पानी डाल ही देते हैं, इसी प्रकार से बाबा हमको खुद ज्ञान स्नान करा देते हैं। अब दो सब्जेक्ट बचते हैं जिसमें हमें कुछ करना पड़ता है। एक तो है धारणा, वो हमें करना है, हैं, बाबा ने दे दिया, माता पिता ने घी का टीन भेज दिया, अब खाना तो बच्चे को, हजम बच्चे को करना है। तो धारणा के लिए बड़ा आसान है कि जगह खाली करो तो धारणा हो जाएगी। अगर किसी भरी हुई बस में कोई चढ़ना चाहे तो कैसे चढ़ेगा, पहले ही वहां बहुत सवारियां हैं, तो पहले उनको उतरने देगा, जगह बन जाएगी, चढ़ जाएगा। तो धारणा में ज्ञान तो रोज इतना मिलता है, इतना माल मिलता है कि उसको रखने की कमी नहीं है, लेकिन अंदर कुछ और भरा हुआ हो उसको खाली करना पड़ेगा। इसलिए माया ने कब्जा किया हुआ हमारे अंदर, वो क्या करती है कि अभिमान का, लोभ का, मोह का, रिश्तेदारों का, क्रोध का, वो हमें हथियार दिए हुए हैं। हम समझते बड़े अच्छे हथियार हैं, गुस्सा करो दूसरा कांपने लग जाए, इतना गुस्सा करो है, बड़ी ताकत है गुस्से में। पैसा रखो दूसरे हर आदमी आपके आगे झुकने लग जाए, पैसा कमाओ। मोह रखो तो बाल बच्चे इधर उधर, उसमें आपका टाइम अच्छा पास हो जाएगा, उनके काम में लगे रहोगे। अहंकार का तो कहना ही क्या है, अहंकार माने अकड़ा हुआ, अकड़ वाला। तो जो मुर्दा होता है जिसमें आत्मा निकल जाती है वो अकड़ जाता है, तो जीते जी मुर्दा बनना हो तो अहंकार में आ जाओ, काम विकार उससे भी बढ़िया है। इसलिए ये सब माया ने आपको अपने हथियार दिए हुए हैं कि इसमें खेलते रहो, अज्ञानी लोग करते हैं। अब बाबा कहते हैं इसको खाली करो तो धारणा हो। तो हर एक आत्मा नंबर वार दशहरा मना रही है और साथ साथ धारणा कर रही है। लेकिन सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट, सबसे सूक्ष्म सब्जेक्ट, लेकिन सबसे फायदे वाला सब्जेक्ट, जिसके ऊपर बाकी सब्जेक्ट का आधार है और मदार है, वो कौन सा है? तो आपको पता है कि वो सब्जेक्ट है योग। इतना सूक्ष्म है, जैसे कोई कहे मेरे सिर में दर्द है, आप कह तो नहीं सकते भी है या नहीं है, मेरे पेट में दर्द है। अच्छा, इसी तरह कोई कहे मैं योग में बैठा हूं या नहीं बैठा हूं, वो जाने, वो तो बैठा है। इतना सूक्ष्म ये सब्जेक्ट है कि जो करे उसको अनुभव होगा, जो ना करे उसको ये भी नहीं पता लगेगा मैंने कुछ मिस कर दिया। वो सोचेगा मुरली तो मैं सुन रहा हूं, मैं सेवा भी कर रहा हूं, या क्लास में भी रोज आता हूं, सब कुछ ठीक है। अगर आपने टेस्ट करना हो तो किसी भी क्लास में चले जाओ, सारे इंडिया में, सारे वर्ल्ड में, विदेशों में कुछ ध्यान रखते हैं, आप देखेंगे मुरली की क्लास में सब होंगे। और योग शुरू होने के वक्त कितने होते हैं, वो कहेंगे योग तो लगा ही हुआ है ना, हमारा घर से चले हैं, योग ही लगा हुआ है, बैठ के थोड़ी। तो बाबा के जितने पॉइंट हैं, चलते फिरते योग लगाओ, सहज है इसी आसन, वो सब लगाएंगे अपने को तसल्ली देने के लिए। तो योग का पीरियड कि अगर बाबा हाजिरी गिने तो क्या होगा, बहुत कम। तो नंबर तो बनने हैं, आखिर इतने करोड़ आत्माओं में से कोई, फिर उसमें भी कोई, फिर उसमें भी कोई, करते 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 9 लाख प्रजा सतयुग में बननी है। अच्छा, अब जो 9 लाख प्रजा सतयुग में बननी है, प्रजा ही सही, राजा रानी की बात अभी पीछे रखो, उस प्रजा की कोई खास क्वालिफिकेशन होगी है? जैसे बाबा कहता है कि सीढ़ी में दिखाया गया है कि द्वापर के बाद जो आत्माएं आएंगी उनके थोड़े जन्म होंगे, जो त्रेता में भी आएंगी उनके इतने तो नहीं होंगे जितने सतयुग वाली के होंगे, और जो सतयुग में भी आएंगी उनमें भी केवल थोड़े से होंगे जिनका फर्स्ट जन्म होगा, 1-1-1। अच्छा, है तो सारे ही देवता, लेकिन अब 1-1-1 में भी जन्म लेने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन होगी, वो क्या है? तो वो क्वालिफिकेशन सिंपल है कि जितना हम संगम पर हमारी हाजिरी ठीक होगी, हाजिरी अटेंडेंस, संगम पर हमारी कोई नागा नहीं होगा तो हमारा सारे कल्प में भी कोई नागा नहीं होगा, मिस नहीं होगा, पहले जन्म में आ जाएंगे। अगर संगम पर हाजिरी पूरी नहीं होगी संगम का अर्थ क्या है? ये नहीं कि जैसे मैं 51 साल से ज्ञान में हूं, आप 51 महीने से हैं, कोई 51 दिन से ही हो, नहीं। संगम तब शुरू होता है जिस दिन कोई आत्मा बाबा के यहाँ एडमिशन लेती है, उसके बाद गिनता है बाबा हाजिरी। ये नहीं गिनता कि दादियां 70 साल से हाजिरी दे रही हैं, फिर तो सारी दादियां ही माला में आ जाएंगी, नहीं। बाबा कहता है आए कभी भी, लेकिन उस दिन से आपकी रेखा कैसी है हाजिरी की, तो हाजिरी में आपको पता रेगुलर पंक्चुअल होता है। तो अगर हम क्लास में भी योग की क्लास में मिस करते हैं और मुरली की भी मिस कर देते हैं, तो जैसे कोई काफिला जा रहा होता है, कोई रेस हो रही होती है, हम ऑटोमेटिकली उतना पीछे हट जाते हैं, फिर चलते रहते हैं। तो पहली बात तो यह है कि हमारी सतयुग में बाबा तो कहता है लक्ष्मी नारायण आपका स्टेटस है, अगर आपकी सभा से पूछा जाए राम राम सीता कौन बनने चाहते हैं जिनका इतना पूजन है, तो राम सीता तो कोई बनना नहीं चाहता, प्रजा बनने की तो बात ही छोड़ दो। इसलिए बाबा ने कहा है कि ये राजयोग हमारा सब्जेक्ट है, राजा बनाने वाला योग। अगर कोई राजा नहीं बनता, कम योग लगाता है, तो प्रजा बन जाता है। अच्छा, अब आप देखेंगे कई मुरलियों में बाबा ने कहा है कि कोई चीज विधिवत होती है, कायदे अनुसार होती है, मर्यादा के मुताबिक होती है, पूरे नियम के अनुसार होती है, तब उसका पूरा रिजल्ट निकलता है। अगर आप कोई गीत सुने, बीच में रिकॉर्ड बंद हो जाए, फिर चले, फिर बंद हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा? अगर नल में से पानी आ रहा हो, बीच में बंद हो जाए, फिर आ जाए, फिर बंद हो जाए, आपको कैसा लगेगा? तो इसी प्रकार से हमें अपनी रेगुलरिटी, ज्योतिषी भी कहते हैं किसी के हाथ की लाइनें कटी हुई हों तो अच्छा नहीं होता, और कोई कटी हुई चीज को जोड़े, गांठ भी बांध दे दोबारा, तो उसमें वो शक्ति नहीं रहती। तो बाबा हमेशा कहते हैं अपनी आपका मैं रिकॉर्ड देखता हूं, तो उसमें ये जो योग का विषय है, आप हर मुरली में देखेंगे बाबा कहते हैं डिटेल में ना भी जाओ, अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। ये हर मुरली के अंदर एसेंस होता है, अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप दगद होंगे, पिछला बोझ उतारने का और कोई तरीका है ही नहीं। अच्छा, अब जब हम ज्ञान सुनते हैं तो अपने को आत्मा समझ के भी सुन सकते हैं, बॉडी में भी सुन सकते हैं, कानों के द्वारा सुनते हैं। जब आप धारणा करते हैं तो शरीरधारी समझ के ही धारणा करते हैं, और जब हम सेवा करते हैं तो खुद को भी शरीरधारी आत्मा मानते हैं, दूसरे को भी। केवल एक योग का विषय है जिसमें जब हम बैठते हैं या बिठाते हैं तो हम आत्मा अनुभूति करते हैं। तो है ज्ञान सारा आत्मा का, क्योंकि इस ज्ञान को सारा दिन हमने कितना धारण किया, लिफ्ट को कितना टाइम ऊपर का बटन दबाया, उसका आधार है रूहानियत। रूहानियत मैंने आत्मा समझना। हर मुरली में बाबा मीठे मीठे सिक्की लदे रूहानी बच्चे कहता है ना। तो जब हम ओम शांति कहते हैं तो भी रूह की तरफ कहते हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। चुप रहना सिर्फ शांति नहीं है, वो भी अच्छा है, लेकिन शांति मन की शांति, मन का मौन। तो हर लिहाज से आप देखेंगे कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट विषय, सब्जेक्ट जिस पर बाकी सारे सब्जेक्ट डिपेंड करते हैं, वो है योग। अच्छा, अब बाबा ने ऐसी दिनचर्या बनाई हुई है कि अगर हमें अपनी मर्यादा पुरुषोत्तम की डिग्री लेनी है, देवताओं की एक डिग्री है मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा के अनुकूल चलने वाला, ना कम ना ज्यादा। अगर कोई ज्यादा भी कोई काम करता है तो कुछ और काम में घाटा डाल लेगा। मर्यादा मैंने कि मुझे जैसे आप भोजन बनाते हैं कितना नमक डालना है, उससे जरा ज्यादा डाल दो या जरा कम बिगड़ जाएगा। अगर हमें स्नान करना है कितने पानी से करना है, अगर हम समझे यज्ञ में पानी चल रहा है तो खूब अच्छी तरह बहा दें तो भी हमारा संस्कार बिगड़ जाएगा, अगर हम थोड़ा सा यूज करें तो भी बिगड़ जाएगा। कहीं पैसा खर्चना है वहां हम कंजूस बन जाए, जहां नहीं खर्चना वहां हम कहें हम खर्चते हैं तो भी बिगड़ जाए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब है कि सुबह से शाम तक हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में हो, आंखों से क्या देखना है, कितना बोलना है, कितना सुनना है। स्लोगन तो हमारे बड़े अच्छे हैं, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, है ना, हर चीज की मर्यादा है। लेकिन इन मर्यादाओं के सारी के पालन के लिए हमें योग का सब्जेक्ट काम आता है। और योग का सब्जेक्ट शुरू कब होता है, तो बाबा ने हमें कहा हुआ है कि मेरे बच्चे क्वालिफाइड वो होंगे जो फरमा बरदार है जी, फरमा बरदार, वफादार, ईमानदार और आज्ञाकारी, ये हमारी स्टूडेंट के लिए बाबा ने मर्यादा रखी हुई है। आज्ञाकारी मैंने हर बात में हां जी करो, आप थके हुए हैं आपको कह भी उठो इस जिज्ञासु को समझाना है, हां जी, नहीं मैं थका हुआ हूं दूसरे से करवा लो ना। अच्छा, हां जी का मतलब है कोई पहले कुछ कहेगा फिर आप हां जी करेंगे। ईमानदार, कोई आपसे पूछता है कि आपके साथ वाले जो कमरे में रहते हैं वो सुबह योग में आए थे, आप सोचते अगर मैंने कह दिया नहीं आए थे तो उसको उन्होंने पूछ लिया नहीं आए थे तो वो हमारे से झगड़ा करेगा कि मेरा क्यों बताया, तो आधा सच बोलते हैं जी मुझे पता नहीं, है ना, पता है कि नहीं आए थे पर मैं क्यों बुरा बनू, मुझे पता नहीं। अच्छा, ये ईमानदार, फिर भी पूछने पर बताना। आगे चलो वफादार, अब वफादार वो होता है जिसे पूछो या ना पूछो वो ये नहीं देखता मेरे को कोई पूछेगा तुम अमृत वेले आए थे, मेरे को कोई पूछेगा तुमने बैज लगाया हुआ है, मेरे को कोई पूछेगा तुम सोते समय ध्यान योग में बैठ के सोए ना। वफादार मैंने जिसको हर वक्त ऑटोमेटिकली है कि मुझे भगवान से, जिसको पतिव्रता कहते हैं, वफादार रहना, ये नहीं किसी के डर से या किसी लालच से वफादार रहना। लेकिन इन चारों का आधार है फरमा बरदार, फरमान को मानने वाला अर्थात श्री मत को मानने वाला। ठीक है, अगर हम फरमा बरदार कम हैं तो सारे ही फरमा बरदार बच्चे, तो फिर हम वफादार भी उसी रेशो में होंगे, ईमानदार भी उसी परसेंटेज में होंगे और आज्ञाकारी भी उसी लेवल के होंगे। अब फरमान बरदार में बाबा ने ऐसी युक्ति रची हुई है कि जितना बच्चा धारणा में बढ़ेगा उतना ही वो फरमा बरदार हो सकेगा पूरा पूरा। तो पहला फरमान बाबा का क्या है, बाबा कहते हैं कि सतयुग जो है वहां से दुनिया शुरू होती है, गोल्डन एज, और सतयुग की दुनिया को शुरू करने से पहले संगम है जहां के हम रहने वाले हैं। हम ब्रह्मा कुमार और कुमारी संगम युग के हैं और संगम को सारे कल्प का अमृत वेला कहा जाता है। सारे संगम को आप देखेंगे तो सारे कल्प का अमृत वेला, सारे कल्प का शुभ प्रभात दिन चढ़ने से पहले, और डायमंड एज कहा जाता है सतयुग को, गोल्डन एज कहा जाता है। बाबा कहते हैं देवताओं से भी ऊंचा स्टेटस आपका है, इच्छा मात्रम अविद्या आपकी होनी है, देवताओं की तो इच्छा होती नहीं। और ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं जो भगवान के बच्चे हैं, भगवान उनका बाप है, भगवान उनका टीचर है, भगवान उनको ऐसी दवाई देने वाला सतगुरु है जो मुर्दा भी जिंदा हो जाए। अमर का मतलब ही क्या होता है, जो मरे नहीं। अच्छा, तो दुनिया का अमृत वेला है संगम। सिख लोग कहते हैं अमृत वेला सतनाम बड़ियाई विचार, कहते हैं कि नहीं, अमृत वेले में सच्चे परमात्मा का नाम याद करो और आप बढ़ते जाएंगे हैं, चढ़ती कला हो जाएगी। चढ़ती कला सारे कल्प में आप देख लो साफ लगा के, सिर्फ संगम पर होती है। सतयुग फर्स्ट डे से भी थोड़ी थोड़ी उतरती शुरू हो जाती है। तो चढ़ती कला सबका भला, तेरे भाने भगवान के वजह से सबका भला होता है। तो ऐसे संगम, सारी सृष्टि के संगम की टॉप पर अमृत वेले पर हम बैठे हैं। अब उस अमृत वेले को तो हम महत्व देने के लिए, क्या हम सचमुच उस अमृत वेले के महत्व को रखते हैं? जैसे आज भी कह रहे थे कि जो बच्चे अपने टाइम की वैल्यू नहीं करते संगम युग के टाइम की, उस पर बाबा को बहुत 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 तरस पड़ता है कि बाबा देख रहा है कि मेरे बच्चे कैसे कदम में पदम कमा भी रहे हैं, और कदम में पदम कमा सकते थे लेकिन उसको गवा भी रहे हैं। कितना गवा रहे हैं और कितना कमा रहे हैं उसका बैलेंस देखें हैं? इसलिए आप गौर से देखिए कि ये मौका ऐसा है जो फसल बोने का मौका है, बीज बोने का मौका है, कमाई करने का मौका है, और कमाई करने के रास्ते में जो विघ्न आते हैं वो हमारे पुराने संस्कार, पुराना हिसाब किताब, पुराने संबंधी, पुराना खाता अकाउंट का। और उस पुराने को खत्म करने का बाबा ने कहा एक ही तरीका है, योग। तो इसलिए योग पर बाबा बहुत जोर देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अगर आप सचमुच अमृत वेले संगम को मानते हो, उसका प्रूफ क्या है? और उसको आसानी से सारा संगम युग आप अमृत वेला समझ के चलो, उसका क्या तरीका? तो कहते हैं कि एक लड़के ने, यंग लड़के ने बहुत बड़ा पाप कर दिया, अपराध कर दिया, तो जज ने उसको 40 साल कैद की सजा दे दी। यंग लड़का 20 साल का और बहुत बड़ा अपराध कर दिया, सजा तो देनी थी, 40 साल की सजा दे दी। अब वो रोने लग गया, चिल्लाने लग गया, जज साहब मैं मर गया, अब देखो 40 साल के बाद 40 साल मैं जेल में रहूं, सजा खाऊं, हैं? तो इससे तो बहुत मेरा दुख होगा। तो जज ने कहा अच्छा चलो ठीक है, बच्चा तेरे पर तरस आ रहा है, तो एक दिन तो जेल में रह सकता ना, एक दिन तो सजा भोग सकता है ना। बड़ा खुश हो गया, कहता जी एक दिन तो मैं भोग सकता हूं, हंसने लग गया। तो जज ने कहा ठीक है, एक दिन की सजा भोगना और 40 साल में हर दिन को नया दिन समझ के भोगना। समझा आपने कि सजा तुम्हारी वही रहेगी, लेकिन समझना मैं आज के दिन की भोग रहा हूं, अगले दिन फिर आके आज के दिन की भोग रहा हूं। इसी प्रकार से वो तो सजा की बात है, यहां कमाई है। तो संगम युग की कमाई में बाबा कहता अगर एक सेकंड आपने खोया, तो जैसे मक्खी आ जाए कैमरे के आगे तो पर्दे पर बहुत बड़ी मोटर कार जितनी मक्खी दिखती है, इसी प्रकार से अगर संगम का बीच में मिस हुआ तो सतयुग का बहुत सारा हिस्सा मिस हो जाएगा। अगले कल्प का सतयुग का ही मिस होगा, कलयुग का तो मिस होगा नहीं। तो इसलिए इतना इसका महत्व है। तो इसलिए बाबा ने हमारी दिनचर्या में अमृत वेला रख दिया कि जैसे सारे कल्प का अमृत वेला संगम है, ऐसे सारे दिन में भी अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त है। आपको पता है कि जितने चार चीजों के नाम ब्रह्मा के साथ जोड़े हुए हैं वो सब हमारी ब्राह्मणों की दिनचर्या में आते हैं। एक तो ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, है ब्रह्मा के द्वारा बताया हुआ अमृत वेला। एक ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा का दिया हुआ ज्ञान। एक ब्रह्मचर्य कहते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा का सिखाया हुआ आचरण। और एक ब्रह्म भोज कहते हैं, शिव बाबा के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा बताया हुआ हमारे खान पान का तरीका। ठीक है, अब ब्रह्म मुहूर्त जो है, बाबा कहता है नया साल कब शुरू होता है, कृष्ण की जन्माष्टमी कब होती है, सारा मुरलियों में आया है ताजा, के 12:01 पर। जैसे नया दिन शुरू होता है वैसे रात ही होती है, लेकिन नेक्स्ट डे की डेट जो है 12:01 पर शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त 12 बजे के बाद शुरू होता है। बाबा कहता अच्छा बच्चों को और रेस्ट चाहिए तो कोई बात नहीं, 2 बजे 3 बजे 4 बजे, लेकिन 4 बजे के बाद तो फिर ब्रह्म मुहूर्त मिस होना शुरू हो जाता, फिर तो मॉर्निंग शुरू हो जाती है। तो इसमें बाबा ने बहुत बताया है कि बच्चे जैसे सारे कल्प में कलयुग तमो प्रधान युग है, यहाँ माया का राज है, काजल की कोठड़ी में कितना भी समझदार चला जाए उसको काजल जरूर लगता है, इसी प्रकार से सारे दिन में रात का समय 10 बजे के बाद बहुत तमोगुणी समय है, उसमें जितने विकारी लोग, खराब लोग, शराबी लोग, जुआरी लोग, चोर उचक्के रात को निकलते हैं, काकरोच भी आपने देखा होगा रात को निकलते हैं, मच्छर रात को निकलते हैं, खतरनाक चीजें रात को निकलती हैं, और अमृत वेला वो सब सो जाते हैं, और अमृत वेले माताएं मंदिर जाती हैं, लोग भगत भजन करते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं, योगी तपस्या करते हैं, भगत भक्ति करते हैं, वो जैसे वो तमो प्रधान है वो सतो प्रधान है, तो सतो प्रधान मैंने थोड़े से में ज्यादा फायदा हो जाता है, नहीं तो सारे वाइब्रेशन हटाओ, जैसे कोई शोर कर रहा हो, कोई बच्चा पढ़ रहा हो तो आप कहते हैं इसके पास शोर ना करो, कोई अस्पताल में सीरियस मरीज पड़ा हो और उसके पास लोग शोर करें तो कहते हैं यहाँ शोर नहीं करना। शहरों में भी लिखा होता है जहाँ कोई गवर्नमेंट की ऑफिस होता है यहाँ हॉर्न नहीं बजाना। तो ऐसी हालत में इस अमृत वेले में जो आप योग करेंगे, बाबा को याद करेंगे, तो बाबा ने फिक्स कर दिया टाइम। मुरलियों में आया है कि बच्चे जैसे बड़े से बड़ा व्यक्ति भी कितना भी बिजी हो अपने परिवार के लिए स्पेशल टाइम रखता है मिलने के लिए। तो मैंने, हालांकि बाबा भक्तों को भी खुश करता है, भक्ता साइंसदानों को भी टच करता है, कई काम करता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए मैंने फिक्स कर दिया है कि मेरे बच्चे अमृत वेले मेरे पास आ जाए, बस और कुछ नहीं करना। तो मैं उनको माला माल कर दूंगा, उनकी सफाई कर दूंगा, उनके अंदर जो जाला लगा होगा जैसे बच्चा स्नान करता है, तो मैं आप ही उनको रिप्लेनिश करके, उनको एनर्जाइज करके, पिछले दिन की उनकी सब कमी बेशियां बराबर करके, लेवल करके उनको रेडी कर दूंगा एक बिल्कुल नए दिन के लिए। ये बाबा ने कहा हुआ। अच्छा, पर आए, अब बच्चे उसी में आप देखेंगे गफलत कर जाते हैं। तो जब कहते हैं वेल बगन इज हाफ डन, अगर आपने शुरुआत ही ढीली की तो फिर सारा दिन कैसा चलेगा। आप कहेंगे नहीं, ज्ञान के आधार से मैं मुरली से फ्रेश हो जाता हूं, मैं ध्यान रखता हूं, सब ठीक है, लेकिन वो जो पुश मिलता है आत्माभिमानी बनने का, बाबा ने तो मुरलियों में यहां तक कहा है कि जैसे शिव बाबा परम धाम से दूसरे तन में प्रवेश करता है, आप ये समझिए कि ब्रह्म मुहूर्त में आप ब्रह्म लोक से निकलकर अपने तन में प्रवेश कर रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं काम करने के लिए, तो आपकी अवस्था ऊंची रहेगी। अगर नीचे से ऊपर जाने का करेंगे तो बहुत मेहनत लगती है, नीचे से ऊपर गेंद भी फेंको वापस आ जाता है, तो अपने को रखो ही ऊपर पंछी की तरह फ्लाइंग स्टेज में, काम करने के लिए नीचे और फिर उड़ जाओ। लेकिन ये शुरू होता है अमृत वेले में। तो अमृत वेले में आप सबको पता है उसी में माया विघ्न डालती है। बाबा कहता पढ़ाई में नहीं डालती, ज्ञान सुनने सुनाने में भी नहीं डालती। तो अमृत वेला जो हमारा डायमंड पीरियड ऑफ है अपने साधना का, उसमें बच्चे सो जाते हैं, क्या होगा, वैसे चुस्त रहेंगे। जब अमृत वेला आएगा तो ऐसे लगेगा जैसे शरीर की हर हड्डी किसी ने तोड़ दी है और अधमुर्दा पड़े हैं, हिल भी नहीं सकते, पता नहीं क्या हो गया, आत्मा सिर्फ देख रही है, शरीर में जान ही नहीं है। अच्छा, जब 4:45 बजेंगे अमृत वेला का ऑफिशियल टाइम पूरा होगा तो इतने चुस्त हो जाएंगे, बिल्कुल एक्टिव, जैसे सारी जान वापस आ गई है, और फटाफट भागेंगे, किचन में जाएंगे, चाय पिएंगे, ये करेंगे वो, 4:45 तक पता नहीं क्या ग्रहण लग जाता, पता नहीं क्या हो जाता, और उसके बाद जैसे कॉकरोच तेजी से भागता है ना, एक्टिव, बिल्कुल एक्टिव, भाई ये क्या हुआ। अच्छा, कई तो उससे पहले भी जाग जाएंगे, फिर ऐसी नींद आएगी 5:45 बजेंगे तो आंख खुलेगी, बिल्कुल पक्का, कमाई का वेला कट। तो बाबा कहता है ये खेल क्यों होता है? अगर आप देखेंगे इसका आधार पिछले दिन की दिनचर्या पर होता है। अगर पिछले दिन की दिनचर्या में हमने मर्यादाओं को नहीं निभाया, और जैसे रात को बाबा कहता है कि अपना अकाउंट देकर सो, अच्छा हो गया, वैसा तैसा हो गया, जैसे एक मैनेजर अपने प्रोपराइटर को अकाउंट दे देता है, आज गए थे जी वहां पैसे वसूल हुए वहां नहीं हुए, उसने देने के बाद वो हल्का हो जाता है, तो हमारा क्या घिसता है कि हम बाबा को अपना अकाउंट दे दें? बाबा ये तो नहीं कहता सारा अच्छा ये जो है वो दे दो, उसके बाद आप हल्के होके सोओगे तो रात की नींद भी आपकी नाइट ट्रेवल गिना जाएगा। बाबा ने कहा हुआ है जैसे लोग रात को ट्रेन में यात्रा करते हैं समय बचाने के लिए, और आपकी अगर बाबा की याद में सोओगे तो बाबा की याद में जागोगे, उसका टेस्ट क्या है कि सुबह उठकर आपको पहला ख्याल क्या आता है, पहले सामने कौन आता है? बाबा आता है। जैसे छोटे बच्चे भी माता पिता को लौकिक में जाके प्रणाम करते हैं, बाबा आता है या कोई लौकिक संबंधी आता है या कोई चीज याद आती है या अगले दिन का मुकदमा याद आता है या कुछ भी याद आता है, उससे पता लग जाएगा आपको कि बाबा की याद में सोए थे तो बाबा की याद में जागेंगे। अगर और किसी उधेड़ बुन में रहे तो कनेक्शन टूटा नहीं, वो तो माया का कनेक्शन रात को सपने भी लाएगा और सुबह भी बोझल होगा मन, तो जब मन बोझल होगा तो फिर ये कमाई का टाइम कट जाएगा। तो अनुभव ये कहता है कि अगर आप अपनी दिनचर्या को ठीक रखते हैं तो अमृत वेला आपका एक्टिव रहता है, और बाबा का सहयोग तो है ही। बाबा कहते मेरे ऊपर छोड़ दो, एक बारी बहुत साल पहले मेरा योग नहीं लगा अमृत वेले, तो मैंने बाबा से पूछा, बाबा मेरा योग तो लगा नहीं, अब जब योग ही नहीं लगता तो ऐसी हालत में मैं जाके बैठूं, सारे वाइब्रेशन को खराब करूं, अपनी तरफ से मैं वकालत कर रहा था, दूसरों के भी वाइब्रेशन भेजूं, तो उसने नहीं जाना अच्छा है ना, या मैं खाट पर ही बैठ के योग कर लूंगा। बाबा ने कहा नहीं, बच्चे हाजिरी के भी नंबर हैं, आप वहां प्रेजेंट हो जाओगे जाके, अनमने भी थके हुए भी उसके भी नंबर है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसलिए हर चीज के हर स्टेप में आप पीछे भी हट सकते हैं, छोटा सा स्टेप लेंगे आगे भी बढ़ सकते हैं, और इसके लिए कितना ज्ञान हमें मिला हुआ है कि अगर 5000 साल अब मिस किया तो आज का अमृत वेला मिस नहीं किया, बल्कि हर 5000 आपने मिस कर लिया, और अगर आज थोड़ी सी हिम्मत करके थकावट भी थी आ गए तो हर 5000 साल के लिए आपने नूंद लिया। ज्ञान सारा हमको रहता है, फिर भी इसका आधार है सारे दिन के दिनचर्या पर अटेंशन, और आप अमृत वेले इतने उड़ सकते हैं, इतनी बॉडी कॉन्शियस से अलग की फीलिंग में आ सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा जो बाबा कहता फरिश्ते बन जाओ, फरिश्ता रूप आपको शरीर में रहते हुए महसूस हो सकता है कि सारा दिन का पर उसका प्रभाव रहता है। जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं ये गोली रामबाण है लेकिन इसको सुबह खाली पेट खाना, तो आप ध्यान रखते हैं ना। अब अमृत वेले का मतलब क्या है? अमृत, अमृत मैंने जो चीज हमें मृत्यु से, मृत्यु के भय से, शरीर से परे ले जाए। सबसे ज्यादा भय व्यक्ति को मृत्यु का होता है, और उससे कम भय बीमारी का, इसका, रोग का, शोक का होता है। तो मृत्यु के भय को जो जीतता है उसको मृत्युंजय कहते हैं। तो बाबा कहते हैं मौत पर जीत पहनना का मतलब क्या कि आप देवता बनना। देवता शरीर छोड़ते हैं, उनको मृत्यु की फीलिंग नहीं आती। जैसे रात को सोता है व्यक्ति, सुबह जाग जाता है, एक शरीर से आंख बंद होती है, दूसरे में चले जाते हैं। तो ऐसी स्टेज को हमने यहां बनाना है, कमाना है ना, तो उसको कमाने के लिए भी हमें अमृत वेला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझिए ये बाबा ने एक टेस्ट रखा हुआ है, फिल्टर रखा हुआ है कि जो आत्मा अमृत वेले को महत्व देती है, अमृत वेले को स्ट्रांग बनाती है, वो अपना कल्याण खुद करती है। और बाबा का फर्स्ट फरमान है, फरमा बरदार, अमृत वेले को मजबूत बनाओ। तो ये हमारे हाथ में है, हमारे हित में है। कई पहले पहले मुझे आलस आता था, मैं क्या करता था कि देखो अखबार बेच, सुबह उठने में ही आलस आता था कि अखबार बेचने वाले सुबह 4 बजे जाके अखबार के दफ्तर से अखबारें खरीद के लाते हैं थोड़ा पैसा कमाने के लिए। डबल रोटी बेचने वाले सुबह सुबह जाते हैं दुकान पर, चाय बनाने वाले सुबह अंगीठी जलाते हैं, रेलवे के इंजन चलाने वाले सवेरे सारी रात इंजन चलाते रहते हैं, नाइट ड्यूटी वाले रात को काम करते हैं। तो क्या मैं नहीं उठ सकता? अगर मुझे किसी को ससुराल जाना हो, नई नई शादी हुई हो, उसको क्या 3 बजे तेरी गाड़ी चलती है, वो 2 बजे नहा लेता है। अच्छा तो तुमको क्या तकलीफ है? ऐसे मैंने अपने मन को कई तरीके से समझाया तो मेरा सुबह जागना तो शुरू हो गया। अच्छा अब सुबह जब कोई होता है मैं सोचता हूं, अच्छा फिर और भी है कि मान लो बड़ी दीदी कहा करती थी कि अमृत वेले के बाद आप ये सोचो कि मेरी खाट के ऊपर बहुत बड़ा कोबरा सांप बैठा है, हैं जी। अगर आपको ये लगेगा क्योंकि क्या पता विनाश जब आएगा तो विनाश को ये थोड़ी कहेगा मैंने 12:30 बजे आना है दिन के, विनाश रात को 3 बजे भी आ सकता है, 2:30 बजे भी आ सकता है। अर्थक्वेक आ जाए उस वक्त भी तो थर थर कांप के खड़े होंगे कि नहीं मैं बच जाऊं मैं बच जाऊं। तो पहले से उसकी तैयारी क्यों ना रखे। इसलिए भय से या प्रलोभन से, मान लो मेरी खाट के नीचे रात को कोई फोन कर दे कि भाई 3 बजे कि आपके नीचे बम रखा है खाट के नीचे, तो मैं भाग करके सड़क पर आ जाऊंगा। इसी प्रकार से बहुत खतरनाक जब बीमारी आ जाती है इंटेंसिव केयर वार्ड में, तो व्यक्ति रात को भी नहीं सोता, सोचता ये घड़ी कट जाए ये घड़ी कट जाए ये घड़ी कट जाए। तो हर प्रकार से आप अपने मन को समझाकर वहां बैठाइए। वैसे तो दिनचर्या ठीक रहे तो आपको बाबा आप ही आपकी खाट हिलाता है, हमने कई बार अनुभव किया है आपकी खाट बकायदा हिलती है। तो बाबा भी देखता है कि कौन सा बच्चा पुरुषार्थी है, पुरुषार्थी को बाबा मदद करता है। कहते हैं कि एक बाप था, उसने अपने बच्चे से पूछा कि 10 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है। उसने कहा जी 100। तो बाप ने कहा बहुत अच्छा बच्चा, मेरा नाम रोशन करेगा, लाओ इसको चॉकलेट खिलाओ, शाबाश बच्चा शाबाश। अच्छा एक सुन रहा था कोई व्यक्ति, उसने कहा ये क्या है, ये कह रहा है 8 को 10 से जरब दो तो 100 होता है और आप इसकी पीठ थपक रहे हैं। उसने कहा तुम्हें पता नहीं कल इसने 180 कहा था है? अच्छा अभी प्रोग्रेस कर रहा है तो तुमको क्या पता। इसी तरह हमारा बाप है शिव बाबा, वो ये नहीं चाहता कि हम एक्यूरेट जवाब दे दें, कम से कम प्रोग्रेस तो करें ना, आके बैठ तो जाए अमृत वेले। अच्छा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो बाबा पुरुषार्थी की मदद करता है, जो डिटर्मिनेशन करता है कि आज से मैं ऐसा करूंगा, आप देखेंगे बाबा 3-4 बार उसको हेल्प करता है। फिर अगर फिर वो भूल जाए, टेढ़ा हो जाए, अपना प्रॉमिस को ढीला कर ले, फिर बाबा कहता है हिम्मत बच्चे मदद बाप, ये मेरा लॉ है। अगर बच्चा हिम्मत नहीं रखेगा तो मैं उसको मदद भी कैसे दूं। बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारी तरफ से योग करे आओ, ये तो नहीं हो सकता ना, मास्टर पढ़ा सकता है इम्तिहान तो नहीं दे सकता बच्चे की तरफ से, इम्तिहान भी मैं दे दूं, क्योंकि सतयुग में हमें आना है बाबा को तो नहीं आना। इसलिए आप इस बात को पक्का कर लें कि मुझे अपनी नब्ज देखनी है कि मेरा आध्यात्मिक हेल्थ ठीक है, मैं सेवा के योग्य हूं, फिट हूं, मैं धारणा के लिए ठीक हूं, तो मुरली सुनने के लिए भी मैं फिट हूं, तो आप अमृत वेले पर जोर दीजिए। अमृत वेले पे आपने गड्डी स्टार्ट कर ली तो लगातार आप ही चलेगी और आपको हर जगह मदद मिलेगी। कोई गलती करने लगोगे तो रुक जाएगा, कोई नुकसान होने लगेगा तो बच जाएगा, क्योंकि आप चेतन हैं। तो अमर बनने के लिए और अमर पद पाने के लिए और अपना सतयुग का पाठ नूंदने के लिए, सतयुग के शुरू में आने का पाठ नूंदने के लिए और उसमें भी अपना स्टेटस ऊंचा करने के लिए एक ही फार्मूला है कि अपने अमृत वेले को महत्व देकर स्ट्रांग बनाए। हम अपने ब्राह्मण जीवन को उतना ही महत्व देते हैं, अपने टाइम को उतना ही महत्व देते हैं, अपनी धारणा और सेवा को उतना ही महत्व देते हैं जितना हम अमृत वेले को देते हैं। और आप अमृत वेले में बैठ के देखिए आपको क्या क्या बाबा नई नई रंगतें दिखाता है और नई नई आपको याद करवाता है। कई बार आपको बिल्कुल भूली हुई बात होगी, अमृत वेले आपके सामने आ जाएगी। आने वाली कोई घटना होगी, आपके सामने आ जाएगी। और ये अमृत वेला आपको अंत घड़ियों में जब आगे आगे खराब टाइम आएगा बहुत काम करवाएगा। जो बाबा कहता है मिर्वा बहुत मलूका शिकार, लोग दुनिया में हाय हाय होगी, दुनिया में भय होगा और आप नाचेंगे, वो उसी को हो सकता है जो विदेही बन सके। और अमृत वेला आपको एक ही टाइम है, जब आपको कोई दिन नया शुरू नहीं हुआ, पिछला खत्म हो चुका है, आप विदेही बन सकते हैं। तो जैसे कल्प का संगम है ऐसे दिन का अमृत वेला है। हर अमृत वेले के चार्ट को आप बढ़ा करके अपने पाठ को बढ़िया कर सकते हैं। ओम शांति।
किसी भक्ति का फल पाए पास तुम्हारे इतने आए,
तेरे सिवा कोई नजर न आए।
किसी भक्ति का फल पाए पास तुम्हारे इतने आए, कानों में मेरे हंसा है।
हंसी कहां कोई उसके जैसा है,
जो प्राणों में बसा है, मुस्कानों में मेरे हंसा है। तुम्हारे हम, बाबा तुम्हारे हम, बाबा तुम्हारे हम, बाबा तुम्हारे हम, बाबा तुम्हारे हम।